ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। युवाओं को रोजगार के माध्यम से सामाजिक विकास का लक्ष्य हासिल करने की सरकार की आकांक्षाओं के अनुरूप कल देश के विभिन्न भागों में 16वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नई भर्तियों के लिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव नियुक्तों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के रोजगार मेला कार्यक्रम के जरिए लाखों युवा केंद्र सरकार में पहले ही स्थायी रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।
केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
महाराष्ट्र में मध्य रेलवे ने मुंबई पुणे और नागपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल सभागार में 189 नियुक्ति पत्र वितरित किए। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल की ओर से 148 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पश्चिम बंगाल में कुल 449 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। संसदीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने नागालैंड के दिमापुर में रोजगार के लिए प्रधानमंत्री के पहल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन्नयन की सराहना की। बिहार में अब तक 80% से अधिक मतदाता अपने फॉर्म जमा करा चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाताओं से फॉर्म भरवाने का काम 25 जुलाई की निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग ने बताया है कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली अस्थायी सूची में नाम शामिल कराने के लिए मतदाताओं को वांछित दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा। जरूरी होने पर मतदाता को दस्तावेज जमा करने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट कंपनी पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसके निदेशकों तथा प्रमोटरों की 762 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां पंजाब हरियाणा दिल्ली महाराष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के सिंगापुर और चीन की 3 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे सिंगापुर में विदेश मंत्री अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर चीन के तियानचिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद में भाग लेंगे। चीन यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के संबंध में 15 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में घटनाक्रम और एयर इंडिया की बोइंग 787 विमान AI-171 की इंजन की स्थिति की जांच की गई। इससे पता चला है कि विमान के इंजन को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। इस बीच नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने जांच एजेंसी के रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये प्रारंभिक निष्कर्षों पर आधारित है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे।
दिस इज अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट राइट नाउ एंड फ्रॉम द मिनिस्ट्री वी are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. We are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible, the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions.
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा और खासकर आयुष पद्धति के साथ यांत्रिक मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़े जाने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि विश्व संगठन की रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि भारत तकनीक के इस्तेमाल से पारंपरिक चिकित्सा को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। यह आयोजन शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले सुश्रुत की जयंती पर किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।